चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा की वंदना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी, उसके लिए वे कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृपा निरंकुश महामाधुर्य का दिंदिनी, महाप्रभु जी की कृपा है। निरंकुश मनी की बिना किसी बिना विघ्न बाधा बिना निषेध और विधि, कोई विधि निषेध उन पर लागू नहीं। किसको कृपा कर देंगे और उससे उससे अपनी जो कुछ संपत्ति है उसको दे देंगे, कोई विधि निषेध उसमें नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। मान लीजिए कि बनवारी लाल चाहें हम अपनी संपत्ति सबको दान कर दें, सब अंकुश है, बड़े भैया हैं, भतीजा है, घर के लोग हैं, लड़कियां हैं, समाज है, नहीं कर सकते। नारायण है, वो चाहे जो मैं कुछ दे दूं तो उन पर भी अंकुश है। हमें भी पवित्रता और अपवित्रता इत्यादि का ज्ञान चाहिए, सबको सब कुछ नहीं दिया जाए, किंतु महाप्रभु जी की ऐसी कृपा है निरंकुश, और कोई अंकुश नहीं लगा। कब किसको कैसा प्रेम दे दें इस पर किसी का अंकुश नहीं। और कैसी है ये कृपा, महामाधुर्य की, इसका आगे वर्णन करेंगे। वो कैसी कृपा है, जैसे दूर कोई मरुभूमि है, थार डेजर्ट है, मरुभूमि, उसमें एक सूखा हुआ वृक्ष है नीरस, जैसे मैदानी तटों में वर्षा होती है जोर वर्षा, किंतु मरुभूमि तो होती नहीं। ये कृपा ऐसी है माधुर्य कादम्बिनी, कादम्बिनी माने होता है मेघमाला, मेघों की पंक्ति लंबी, जो मैदानी भूमि में वर्षा करके बाढ़ ला देती है और मरुभूमि में रहने वाला वृक्ष नीरस सूख गया है, उसके लिए क्या करेगा। अतः महाप्रभु की तो वर्षा की तो बात छोड़ दो, उनकी ये जो मेघमाला है उसकी छाया भी रहे, छाया और उससे हवा उधर से आए तो उन सूखे हुए वृक्षों में भी प्राण का संचार कर देती है वो महाप्रभु जी की। ऐसी महाप्रभु जी की कृपा है हमारे अंदर में, मैं नीरस हूँ, बहुत दूर मरुस्थल में हूँ। महाप्रभु जी का समय से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का समय प्राय 250-300 वर्ष से दूर हुआ ना, रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के लीला में थे, उसमें प्रकट थे, और ये 250 वर्ष पीछे, 300 वर्ष पीछे ये है। मरुभूमि कलिकाल में भक्ति का प्रचार नहीं है, कर्म को ज्ञान को ही भक्ति मान लेते हैं, शुद्ध भक्ति का, ये शुद्ध भक्ति का नहीं होना ये मरुभूमि है। साधु संतों का, रसिक विद्वान तत्वज्ञ वैष्णवों का मिलना बड़ा भारी दुर्लभ है, सब कुछ मिल जाएगा इस जगत में, भगवान भी मिल जाएंगे, कि तो उनके रसिक प्रेमी और तत्व को जानने वाले जो भक्त हैं इनका मिलना बहुत भारी दुर्लभ। तत्रापि मन्ने
दुर्लभम मन्ने वैकुंठ की
भगवान के जो चीज हैं लिखा लेना बड़ा भारी कुछ कहता हूँ। जब वो कहीं हो और उनकी पिता उसकी हवा भी लगे तो दूर से सूखा हुआ वृक्ष में भी प्राणों का संचार हो जाता है, तो हम लोग उनसे भी दूर हैं महाप्रभु जी से, क्योंकि उनकी कृपा जो बरसी उसके छूटे अभी तक भी है इस जगत में। क्या क्या मतलब क्या है, ऐसे भी महापुरुष लोग हैं जो महाप्रभु की कृपा का लेख अपनी हरि कथाओं में करते हैं। उसकी विशेषता क्या बतलाया हृदय बपरे नौ भक्ति हृदय बपर माने होता है हृदय, बुद्धि नहीं, कोई चाहेगे दिमाग से हम भक्ति को ग्रहण कर ले ये नहीं होगा, दिमाग में ये भक्ति पैदा नहीं होती, उसकी उपलब्धि नहीं होती,
बिना उपलब्धि क्या है हृदय नहीं होगी।
ये भक्ति का क्षेत्र है हृदय, तो जिस क्षेत्र में मान लिया गर्मी के वजह से सब कुछ झुलस गया है, सब कुछ झुल घास सूख गई, पेड़ पौधे सूख गए, किंतु जड़ तो रहेगी, यदि जड़ ही न रहे बीज ही न रहे तो वर्षा होकर के क्या होगा, कुछ होगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, नहीं होगा। किंतु महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है बीज और जड़ की भी जरूरत नहीं, उसे भी नवजीवन संचार करके नए रूप में नव भक्ति को, नव भक्ति माने नवधा भक्ति अथवा नवीन भक्ति, उसके प्राणों का संचार कर दे। जराई मधाई कैसी भूमि थी,
न जड़ न
जंगल के शेर बाघ भालू ये सब क्या थे, उनके तरफ मैं देखा और प्रेम का संचार कर दिया, वो बाघ भी हाथ जोड़ करके दो पैरों पर खड़े होकर के हरे कृष्ण कर लिया, बाघ भालू हाथी सब कुछ। तो जहाँ पर बीज कुछ रहता है वहां पर तो अंकुर हो जाएगा वर्षा से, या कुछ जड़ रहे ना तभी उसमें से जड़ सठीक से नहीं झाके निकाले जैसे बरसात में होता है, क्योंकि जहाँ पर कोई अंकुर ही नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है, वहाँ क्या होगा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। किंतु महाप्रभु की ऐसी कृपा है जिस हृदय में सब कुछ जल चुका है, भक्ति भक्ति की वृद्धि नहीं है, वहाँ पर भी उनके संग से नवीन रूप में भक्ति का संचार कर देते हैं, ऐसी ये महाप्रभु की। और एक क्या दिया है विशेषण, ताप तपर्तु दाह दमनी, संसार में कामनाएं वासनाएं हैं, संसार में दुखी क्यों लोग हैं,
कामना वासना कर रहे हैं,
यदि कामना वासना नहीं रहती तो सभी लोग सुखी रहते, हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु सबकी जड़ ये कामना है। एक आदमी क्रोधी हो, एक आदमी कामी है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपराध करता है, लोगों से शत्रुता करता है, इसका कारण क्या है, कोई न कोई भीतर से कामना वासना है, कामना स्पष्ट रूप से नहीं है किंतु वासना उसमें है, ये वासना ही समस्त अनर्थों की जड़ होती है। इसीलिए पीता तीन प्रकार के ताप, भौतिक आध्यात्मिक और अधिदैवी, तीन प्रकार के ताप हैं। किसी को सांप ने काट दिया, किसी को सांप से तो नहीं काटा, शरीर से रोग हो गया, किसी को एक आदमी ने मारा, आ किसी को कुछ मारा नहीं, उसका कोई आसपास का व्यक्ति मर गया अपना संबंधी, उसको ताप होगा कि नहीं, तीन तरह के ये सब ताप हैं। किसी न किसी रूप में संसार के प्राणियों को ये लगे रहते हैं, कोई इससे मुक्त नहीं। ये तीन प्रकार के ताप लगे रहते हैं। महाप्रभु जी की कृपा कैसी है, एक कृपा के कण से इन वासनाओं को सदा के लिए मिटाकर वहां पर भक्ति का रस का संचार कर देते हैं, ऐसी ये कृपा है महाप्रभु। बड़े बड़े पशु जंगलों में, बड़े बड़े राजाओं के लड़के, बड़े बड़े मायावादी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, कर्मी लोग, सब लोगों के लिए ताप चल रहा है, सबको अपनी कृपा से क्षण मात्र में दूर कर दिया। वसुदेव जी प्रथा दक्षिण में, महाप्रभु जी दक्षिण में जा रहे थे, उसको कुष्ठ रोग हो गया, ये सब गल गए, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। महाप्रभु वहां पर पहुंचे बारह क्षेत्र में, कुर्म क्षेत्र में, लाखों लोग उनके दर्शनों के लिए आए और वो बेचारा अपने कर्म का दोष देता हुआ सबसे पीछे बैठा है। मैं घृणा योग्य व्यक्ति, मैं उनके निकट नहीं जा सकता, वो मेरा सौभाग्य होता कि मैं दूर से भी उनको दर्शन कर लेता, किंतु उस भीड़ में महाप्रभु खो गए। वो हाहाकार करता रहा, महाप्रभु चले गए। एक दो माइल गए होंगे, इसकी अंतर की पुकार उनको सुनाई पड़ी और वहीं से एक मिनट के अंदर में इसके पास में चले आए और उसको उठा करके गोदी से लगा दिया आलिंगन। एक मिनट के अंदर में उसका ये कुष्ठ रोग और सब दूर हो गया। परम सुंदर देवता जी दोनों किनारों को डुबाती हुई निरंकर रूप में वो बाढ़ क्या करती है, समुद्र की तरफ में मिलने जाती है। दोनों किनारे से सबको, जो कुछ पेड़ पौधे नदी यातना जो कुछ है सबको बहाते हुए और बाढ़ से एकदम डुबाते हुए दोनों किनारों को बड़े वेग से क्षिप्त गति से चलती है समुद्र की तरफ। महाप्रभु की कृपा जहां पर बरसती है क्या होता है, विश्व के जितने भी भक्त लोग हैं उनकी कृपा को बारी को पा करके पानी को बाढ़ से जैसे बह जाते हैं वैसे तीव्र गति से किधर चलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु की तरफ में। ये भक्ति रसामृत सिंधु है कौन,
भक्ति रसामृत
सिंधु कृष्ण है। ये नदियां चलती हैं समुद्र में और ये नदियां हैं प्रत्येक हृदय में जो भक्ति की सरस धारा है वो क्या है, समस्त समुद्र की तरफ में जा, समुद्र है मैंने कृष्ण अखिल रसा। महाप्रभु के समय में देखा गया सब लोग बड़ी विग्र से चल रहे हैं राधकृष्ण के लिए, उसमें भी सबसे अधिक गए किधर, कौन भाव में, मधुर भाव में सब लोग बहे, जिसको नहीं देना चाहिए अयोग्य अधिकारी है, अधिकारी नहीं उनको भी उधर में बहा दिया और सब जितने रस थे वो सब गौण हो गए। ये महाप्रभु जी की कृपा है। वो दूर से भी यदि नहीं बरसते तो भी यदि छाया भी होगी ना आकाश में, छाया से सरसता आ जाएगी, ऐसी कृपा की वंदना करते हुए कह रहे हैं। पहले भीष्म पितामह जी थे, हमारे भागवत में द्वादश महाजनों की बात लिखी गई, आसिन महाराज द्वादश महाजनों की बात लिखी, हमको अपना दास बना दिया। कपिल जी का वैसे ही अपनी माता जी को उपदेश दिया, संसार आसार है, इस सब को छोड़ करके भगवान में अपने चित्त को लगाओ, यही उन्होंने बतलाया। भगवान के प्रति निर्गुणा भक्ति होनी चाहिए, उपाधि की भक्ति नहीं होनी चाहिए। निर्गुणा माने क्या, संसार की कोई कामना वासना भी उसको स्पर्श न कर सके, किसी भी कामना वासना के लिए, यहाँ तक की मुक्ति के लिए भी, यहाँ तक की नारायण की जो भक्ति है ये भी नहीं चाहिए। ये द्वारका की जो भक्ति है रुक्मिणी सत्यमावा की वो भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, ब्रज में
जो दास्य भक्ति है, ब्रज में जो सख भाव है, ब्रज में जो बात्सल्य भाव है यशोदा जी का, ये भी मुझको नहीं चाहिए। एकमात्र क्या मिला था उसमें, राधा जी की दासी हम बन, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, पाल्य दासी हम बन जाए, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी देने पर हम नहीं लेंगे। रूप गोस्वामी का ये विचार, वैसे उन्होंने पांच प्रकार के दिखलाए, लेकिन तो सबसे उनका मूल उद्देश्य है उसी को रूपानुग कहा जाता है, जो रूप गोस्वामी के भावों को ग्रहण करे, जो उनका अपना खास भाव कृष्ण के प्रति, साधारण चीज नहीं है। महाप्रभु जी ने जो सामने आए उनको ये प्रेम दिया, कोई भी विचार नहीं रखा। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग भी कहां थर्ड क्लास विषयों में फंसे हुए हैं, और तभी हम वही चीज चाहते हैं कि मर जाएंगे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे और दूसरा कुछ नहीं है। ये किसकी कृपा, उन्हीं की कृपा से आप लोग भी कुछ सुन रहे हैं उस चीजों को। कैसे ये होगी भक्ति, इसके लिए भक्ति रसामी सिंधु में हमारे रूप गोस्वामी ने बताया। तो ये लोग भक्ति कैसे करते थे, ऐश्वर्यमयी भगवान को, कृष्ण को भगवान जानते हैं तो उनके प्रति भक्ति करते थे, और जितने ही उनमें ऐश्वर्य भाव है और ऐसी भाव है उसको ही ईश्वर की अंतिम सिद्धि मानते,
भगवत का जन्म
ऐश्वर्य, जैसे नारायण का जन्म नहीं, नारायण का कोई माता पिता नहीं, समस्तों के आदि हैं, इसलिए नारायण को कौन माना, परमानुजाचार्य मध्वाचार्य, और जितने भी हो, इसलिए इन लोगों ने भक्ति को माना, किंतु भगवान को, कृष्ण को भगवान मान करके उनके प्रति भक्ति के लिए चेष्टा की, जितने ये द्वादश महाजन हैं। किंतु भक्ति रस है, इसमें आनंद है, इस चीज का अनुसंधान नहीं कर सकते। वही भक्ति जैसे प्रहलाद महाराज, श्रवणं कृष्णं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं वचनं वंदनं दत्ता, ये नौ प्रकार की भक्ति साधन बतलाया, आगे कुछ नहीं बतलाया, ये बतलाया ये कैसे होती है। साधुओं के संग से पहले होगी भगवान के प्रति चरणों में श्रद्धा, श्रद्धा यदि नहीं होगी तो शुद्ध रूप में साधुओं का संग भी नहीं होगा, उसमें रुचि नहीं होगी, हरी कथा में रुचि नहीं है। यदि श्रद्धा हो, क्या श्रद्धा, विश्वास जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि चारों वर्णाश्रमी अपने अपने धर्मों को अच्छी तरह से पालन करके भी यदि भगवान के चरणों की सेवा नहीं करते तो उनको नरक जाना पड़ेगा। चारों वर्णाश्रमी माने ये वर्णाश्रम का धर्म क्या, लोगों का उपकार करना, स्त्री का पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, समाज के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण का अपना कर्तव्य, ये सब सत्यवादिता उपकारिता, ये सब जितनी चीजें हैं दान इत्यादि सब परिग्रह, ये सब वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, इन सब को कोई अच्छी तरह से भी करे, जैसे श्री ने, श्री महाराज ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट काट करके वजन करके दे दिया, दधीचि महाराज ने देवताओं के लिए अपने शरीर को गाय से चटवा करके ये छाड़ दिया, जिंदावस्था में। यदि यदि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसको सुन करके साधु के वचनों में, शास्त्रों के वचनों में कुछ श्रद्धा हो, ये श्रद्धा होने के बाद में कुछ हरि कथा सुन सकता है साधुओं के सामने, धीरे धीरे ये श्रद्धा पुष्ट होगी, एक श्रद्धा ये है और दूसरी एक होती है श्रद्धा लोभमयी। लोभमयी क्या है? भागवत की कथाओं को सुना, हमारे गोस्वामी ने जो पुस्तकों को लिखा उसको पढ़ा अथवा उनको साधुओं के मुख से सुना और सुन करके इच्छा हुई कि मेरी भी भक्ति ऐसे ही हो जैसे गोपियों। गोपियों की महानता का उल्लेख यदि कोई साधु पुरुष यदि उनकी महिमा का ध्यान करे उनकी कथाओं का, जो कृष्ण उस प्रेम से वशीभूत हो गए सुनकर के लोग पैदा होता कि हमारी भी कृष्ण के चरणों में ऐसी ही प्रीति हो, तो इसको कहते हैं लोभ। लोभ से आदमी इतना आगे बढ़ जाता है जो साधारण रूप में जो श्रद्धा हुई थी पहले शास्त्रों के सुनने से उससे कुछ भी नहीं हुई थी, उनसे ये सुना बड़ा भारी किसी को जी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि कैसे लोभ होता है उसी को प्रसंग करते हैं। हम एक श्लोक आप लोगों को सुनाते हैं। अभी कथा हो रही है, वक्ता कौन है? तो गोस्वामी वक्ता कैसे हैं? भागवत जब हुई तो प्रणामी पड़ी होगी कि नहीं? कुछ लोटे थाल कपड़े उधर में उनकी दृष्टि थी, मुक्ति में भी दृष्टि थी। ऐसा कोई वक्ता हो जिसको तनिक भी किसी चीज की कामना संसारी पारमार्थिक किसी चीज की नहीं, केवल कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का लोभ हो, तब तो वो व्यक्ति ऐसे ही कथा कहेगा और व्यक्ति भी वैसा ही होना चाहिए। उनको कोई बुलाने नहीं गया, अपने आप आए ना और सब लोग उकट्ठे खड़े हो गए, उनको वहां पर बैठा दिया। नारद जी जो बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी के पिताजी भी बैठे थे उस सभा में और पराशर जी भी बैठे थे, सभी लोग बैठे थे, किंतु इस बालक को 16 वर्ष या 12 वर्ष का बालक उसको लेकर के बैठा। वक्ता यदि हो ऐसा, अब श्रोता कैसा हो? परीक्षित महाराज की सब संसार की कामना वासना छोड़ करके राज्य सिंहासन और मुकुट सब फेंक दिया, एक धोती पहन करके गंगा के किनारे भगवान इनकी इच्छा दे सके और सुखदेव गोस्वामी को दे सके। उस समय में भागवत की कथा होते होते उद्धव जी ब्रज में गए हैं और गोपियों का अत्यंत असमोह असीम प्रेम देखा कृष्ण के प्रेम। कहां ये स्त्रियां और कहां ये कृष्ण और उनके प्रति इतना रूढ़ भाव देखकर के आश्चर्य देखा, किंतु विचार करके देखा सशस्त्र भाव से, लोभ नहीं हुआ ये हमको भी ऐसी भक्ति हो, क्या हुआ सशस्त्र भाव से विचार किया जी ये लक्षण तो किसी में भी नहीं पाए जाते, इन गोपियों में ही केवल पाए जाते हैं, हमारे लिए असंभव। लक्ष्मी जी को जो प्रेम नहीं हुआ, सुखदेव गोस्वामी जी हमको नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, और इन गोपियों में देखते हैं ऐसा प्रेम, बस तटस्थ भाव से विचार किया बुद्धि के द्वारा पुष्टि के द्वारा, यहां से नहीं तो वहां के कुछ हो जाते, वहां के हो फिर लौट करके चले गए मथुरा, यदि वैसा हो जाता तो ब्रज ही में रहते, वैसा हुआ नहीं, तो वहां पर गए और देखा गोपियों का। जो भ्रमण की बात कर रही थी, भ्रमर को देखा और देखा कि ये काला है तो समझ गई ये कृष्ण का दूत है और उसी से बात कर रहे, उसको ये मालूम नहीं जैसे ये कहाँ जानवर है, उसको दूत समझा है। और प्रेम के इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच करके उससे बात विवाद कर रहे हैं। कभी कृष्ण जैसे व्यक्ति से हमारे कोई भी संबंध नहीं है, उसे अब हमारी संधि सुलहनामा नहीं हो सकती। एक ही जन्म में नहीं, इस काले से भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं। काला नहीं कहती, काला किसने नहीं, काला से संबंध हो जाएगा। इसलिए असित का प्रयोग किया है।
अल्लाह मसीह का सख्ती,
असित सख्ती, असित माने क्या होता है,
सफेद नहीं है,
जो सफेद नहीं, इतना ही प्रकार। कृष्ण कह देती, काला कह देती, श्याम कह देती तो कृष्ण से संबंध हो जाता है। उस नाम से भी इनको अब चिढ़ हो गई है, ऐसा भावना दिखला रही है। ऊपर से देखने से मालूम पड़ता है कि ये कृष्ण की निंदा कर रहे हैं, किंतु उद्धव क्या देख रहे हैं, हाँ असीम कृष्ण के प्रति प्यार और प्रीति जो आज तक हमने जगत में कहीं नहीं देखा। इसलिए अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के इन गोपियों की महिमा वर्णन कर रहे हैं। क्या महिमा करना, यदि इस महिमा को कोई सुने तो क्या होगा, वो लोग मई श्रद्धा उत्पन्न होगी, बिना ऐसे लोह मई श्रद्धा नहीं होती। ये कोटि कोटि में भी दुर्लभ, कोटि कोटि प्रकार के भक्त लोग हो सकते हैं, उनमें से कोई किसी एक बिरले को ऐसा लोग उत्पन्न हो जाए जो हमको भी ऐसा भाव हो। किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी, अपने जीवन के क्षेत्र में जो जो उनके निकट है सबने ये लोग पैदा कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे छोटे उस समय थे बालक, और वो क्या कहते हैं, पादाक्षो सब बिना पर कदापि समये किल देवी जाके सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यायते मम रसो सुरसो। हम आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते, हम सखी आपकी बराबरी नहीं बनना चाहते, हमको तो अपने चरणों की सेवा में नियुक्त कर लीजिए, आपके चरणों की दासी। यदि ऐसा नहीं ग्रहण कर सकती दासी के रूप में तो हम अपने जीवन को प्रत्याग कर देंगे। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी जो सबसे छोटे थे राजा के लड़के, राजा का लड़का कैसा होता है, विषय में तो मत होना चाहिए, सबको छोड़ छाड़ करके सुंदर स्त्री राज्य पाज्य सब छोड़ करके उनकी रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी सब लोगों की ऐसे ही भावना। तो ये हमारे उद्धव जी उन गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आओ बैठ, मठ से आ रहा है, मठ से गया था। उद्धव जी कह रहे हैं ये लोग नहीं है बात क्या, और जी गोस्वामी इसकी व्याख्या कर रहे हैं कितना सुंदर। जिनको ये सब श्रवण का रुचि नहीं है ना, उनके जैसा दुर्भागा जगत में कोई नहीं जन्मा, विशेष करके महाप्रभु की परंपरा में आकर के भी उन कथाओं से जो रह गया है, उनके जैसा दुर्भागा विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं जन्मा। गंगा नदी के किनारे बैठ करके प्यास लगी, वो कहे भाई कुआं कहाँ है, इधर खारी कुआं का वहीं कुआं वहाँ है, पानी पियेंगे। अरे भाई गंगा जी में पानी पी लो। नहीं नहीं, ये तो चरण से निकली हुई है ना, ये पानी हम नहीं पीते, ये भोग में नहीं लगेगा, जगन्नाथ जी के भोग में नहीं लगेगा, गंगा जी का पानी नहीं लगाते। यहाँ पर फिर जाता है और यहाँ पर भी कुआं है, गंगा जी का पानी कोई पानी लाया तो देगा, वो नहीं लेंगे। कह अरे ये तो चरण का धुआ हुआ जल, उनके समान जगत में कोई दुर्भागा नहीं है।
सत्ता जन्मवी तीरम कृपम वंशम की दुर्भागा,
इसलिए एक श्लोक को लिया है, लिया है तो चार पांच। अब एक श्लोक की व्याख्या भी यहाँ पर पूरी आज होगी कि नहीं, अभी तक तो हमने भूमिका में कहा, अब आगे चलते हैं। वो श्लोक है, कह रहे हैं एताह परम तनुखितो भुविगोप बुद्धो गोविंद एव अखिलात्म निरूढ़ भावा वांछन्ति यद भाव प्रियो मुनयो भयंच किं ब्रह्म जन्मसि अनंत कथार सत्य। गोपियों की बहुत चुड़ांत महिमा इसमें बतला गया, जहां तक उद्भव जानते थे समस्त इस श्लोक में व्यक्त किया। कहते हैं उसको जगत को ने भूवी वो मैंने पूछी, इस पृथ्वी में जगत में जितने भी देहधारी जीव हैं शरीर को पाने वाले, उनमें ब्रज में गोपियों का ही जन्म लेना और उनका शरीर धारण करना सार्थक है, और इसके अतिरिक्त दूसरों का सार्थक नहीं है। हम तो यही जानते हैं परम माने सबसे श्रेष्ठ वही है गोपियां। क्यों? अरे अखिल जीवों के आत्मा हैं कृष्ण परमात्मा भीतर में रमण करने वाले, कोई जाने और ना जाने हैं तो बस जीवात्मा परमात्मा में अंतर कितना है? कोई अंतर नहीं, दोनों एक साथ में है किंतु उपलब्धि नहीं। यदि उपलब्धि हो जाए तो अभी मुक्त हो जाए, किंतु आश्चर्य की बात है एक साथ में रहते हुए कोटि कोटि अगिनत युग व्यतीत हो गए, अनादि काल हो गया, किंतु जी में से कोई कोई ऐसे लोग हैं जो उनको दर्शन मिल जाता है नहीं से नहीं पाते। तो गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भावा, इस गोविंद के प्रति रूढ़ भाव, रूढ़ भाव माने रूढ़ भाव को समझने के लिए क्या चाहिए? आदव श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में जिसको निष्ठा उत्पन्न हो गई, सब अनर्थ दूर हो गए, रुचि हुई, रुचि से बढ़कर के आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद में भाव आया, भाव के बाद में जिनको प्रेम हुआ, प्रेम के बाद में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, इसके बाद में रूढ़, ये रूढ़ भाव उन गोपियों का कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव जो उद्धव तक को नहीं हुआ, जो कि सत्यभामा रुक्मणी को भी नहीं हुआ। और की तो बात क्या है, यहाँ तक कि यशोदा माँ जी को ये रूढ़ भाव नहीं हुआ, सखाओं को भी नहीं हुआ, अनुराग तक किसी का पहुंचा, किसी किसी की भाव की प्रथम अवस्था तक पहुंचा, माँ भाव के अब छूते छूते अब छू रहे छू रहे ऐसा हुआ है रुक्मणी सत्यभामा का, किंतु पूरा नहीं। और कहां उससे ऊपर रूढ़ भाव कृष्ण के प्रति इन गोपियों का, इन्हीं लोगों का देह धारण करना और जन्म लेना पृथ्वी पर सत्ता। उनकी नित्य काल की प्रिय थी, उनका कोई जन्मदाता नहीं, कृष्ण का जैसे जन्मदाता नहीं उनका, सब साधन सिद्धा जो है जिसको मुक्ति चाहने वाले और जो मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, मुक्ति चाहने वाला मैंने क्या,
मुक्ति
हमको अब जन्म मरण न हो, इस जगत में आना नहीं पड़े, हमको किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक इत्यादि क्लेश न हो, या हम कृष्ण में मिल जाएं, ऐसी भावना को लेकर के जो साधन करते हैं उनको कहते हैं मुमुक्षु, मुक्ति की इच्छा करने वाला, अमुक्त जो इनसे मुक्त हो गए हैं, और भक्त जो इनसे भी ऊपर हैं जैसे अपने के लिए कह रहे हैं। ये तीन प्रकार के लोग जो हैं वो चाहते हैं ऐसा ही गोपियों जैसा रूढ़ भाव हो जाए, और अभी तक नहीं हुआ, लक्ष्मी जी भी नहीं हो सका तो इन लोगों की क्या बात, लक्ष्मी जी अभी भी बेलवन में तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? कृष्ण का वह प्रेम पाने के लिए, किंतु मिला क्यों नहीं? इसलिए कि नारायण में भी उनकी रुचि है, कृष्ण में भी रुचि है, इसलिए नारायण में भी लगी हुई है। और नारायण को वो भगवान जानती हैं, कृष्ण को ग्वाला जानती हैं, और ग्वालिनी नहीं होना चाहती, इसलिए उनको ये प्रेम नहीं हुआ। ये उसी वंश का ही एकदम ऑथॉरिटी है। गोकुल में नहीं आने से कृष्ण का ऐसा प्रेम संभव पर नहीं है। हम लोग भी इसकी इच्छा करते हैं किंतु आज तक नहीं हुआ। तो उद्धव जी तो चाहते थे किंतु हुआ क्यों नहीं? उनमें दास्य भाव और कुछ सख्य भाव मिला हुआ है, किंतु है दास्य प्रधान सख्य, वहां पर यह भाव नहीं आएगा। गोपियों का जब तक अनुगत्य नहीं होगा, जिसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु, यही महाप्रभु की कृपा है, अनर्पित चरिंग किरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसा, उन्नत उज्ज्वल गोपियों के ही भाव है, इसी को देने के लिए आए और विशेष चीज का स्वादन करने के लिए। तो कहते हैं हम लोग वांछा तो करते हैं, कामना करते हैं, किंतु होता नहीं। हम चाहते हैं हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, किंतु ये भाव होना बड़ा मुश्किल है। इस श्लोक की करके ये महाभाव संपत्ति के अधिकारिणी केवल मात्र गोपियां हैं। जिन लोगों को हरि कथा में रुचि नहीं है तो इन गोपियों की महिमा कैसे सुनेंगे? हरि कथा के माध्यम से ही तो होगा, जांच क्या ही नहीं है इसकी। उनको लोभ क्या होगा, और लोभ नहीं होने से साधन क्या होगा, और साधन नहीं होने से उनको मिलेंगे कैसे? इसलिए जिन लोगों को हरि कथा में रुचि नहीं है, पंडस्य श्रम, उनका जितना परिश्रम है बेकार का है, जो भी कुछ करते हैं। यदि हरि कथा में रुचि नहीं हुई तो गोपियों की महिमा कैसे जानेंगे, ब्रजवासियों की महिमा कैसे जानेंगे? कृष्ण इतने उदार भक्त वत्सल, इतने समस्त गुणों के समाहार उनमें है, ये कैसे आदमी जानेगा? भागवत नहीं होता तो कोई समझता? महाप्रभु नहीं आते तो, रूप गोस्वामी नहीं आते तो लोग कैसे समझते? इसलिए कहते हैं कि जिन लोगों को हरि कथा में रुचि नहीं है, ऐसा कोटि कोटि ब्रह्मा का जन्म लेकर के भी क्या लाभ? ब्रह्मा जी क्या करते थे? जगत की सृष्टि, उनकी यह बगीचा है विश्व, कितने सुंदर, कितना सुंदर इनका यह बगीचा है, उसमें कितने सुंदर सुंदर मनुष्यों को, नारियों को, पुरुषों को, और कैसे कैसे कर्म इत्यादि
ब्रह्मा जी के लिए किया
है। तो ठीक है, किंतु ब्रह्मा जी का लाभ करके भी जन्म यदि इन कथाओं में रुचि नहीं हुई तो बेकार का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने खुद ही इस चीज को कहा। अब ये हमारे जी गोस्वामी जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एता परम तनुभित, जगत में किनका देह धारण करना सार्थक है? एता परम, सबसे श्रेष्ठ गोपियों का ही जन्म लेना एकमात्र जगत में, इस पृथ्वी में, इस वृंदावन में सार्थक है, और जगह में नहीं, कहां पर? वृंदावन में गोपी के रूप में। गोपियां भी बहुत प्रकार की हैं, जो सुधा मैया भी तो गोपी हैं, ये भी गोपी हैं। कृष्ण की प्रेयसी जो गोपियां हैं उन्हीं का ही जीवन धारण करना और शरीर धारण करना सार्थक है। कौन कह रहा है? उद्धव जी। उद्धव जी कौन है? कृष्ण के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ। कहते हैं कि ये उद्धव जी जैसे हमारे प्रिय हैं, शंकरसन भी हमारे प्रिय नहीं है, मेरे बड़े प्रिय है। ब्रह्मा जी आत्मजोनी शंकर, आत्मजोनी ब्रह्मा और शंकर भी हमारे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी भी हमारी जो अंक में शायन करने वाली है वो भी प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी प्रिय नहीं है, इतने उद्धव प्रिय है। वो उद्धव जी यहाँ पर कह रहे हैं केवल परम माने यहाँ पर केवल केवल गोपियों का जन्म लेना ही सार्थक है। उनकी कथाओं को जो कोई श्रवण करने की रुचि जिनमें नहीं है उनका जीवन क्या हुआ, उसी चीज को बतला रहे हैं। देखो अखिल आत्मा, अखिल जीवों के आत्मा परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे तुम लोग मत सुनना, जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है। जीवात्मा हम जीव हैं और उनमें परम जो श्रेष्ठ है, जो सबका संचालन करने वाला है, वो परमात्मा है। ये परमात्मा है कौन, कृष्ण के अंश के अंश के अंश का कला है। कृष्ण का अंश नहीं, कृष्ण के अंश का कला है मात्र ये परमात्मा, जो हृदय में साक्षी रह करके सबके भीतर को जानता है, सबका संचालन करता है, पाप पुण्य इत्यादि का भोग कराता है। और यदि किसी की दृष्टि में जो मैं भगवान का भजन करूंगा तो उसको वो ऐसी शक्ति देकर के उधर में भी ले जाते हैं। ये है परमात्मा। परमात्मा कृष्ण के अंश हैं, इसलिए इनको भी वैसा ही मान लिया, मान करके कहते हैं ये जो अखिल जीवात्माओं के आत्मा है, प्राणों के भी प्राण हैं, इनकी स्फूर्ति होना भी दूसरों के लिए बड़ा भारी कठिन है। स्फूर्ति माने क्या, जैसे योगी लोग हजार वर्ष तक तपस्या की, किसी को एक थोड़ा सा एक झलक दे दिया, झलक कर एक, जैसे वृंदावन में होता है ना झलक,
काफी
ऐसे झलक न भी दें उनको, साक्षात रूप में दर्शन करना बड़ा भारी कठिन। किंतु ब्रजवासियों के कौन है ये, वही जो अंश परमात्मा है, परमात्मा का अंशी है कौन, गर्भोदशाई, गर्भोदशाई के अंशी कौन है,
कर्मदशाई,
इनके अंशी कौन है महासंकर्षण, उनके अंशी कौन है
मूल
संकर्ष, उनके मूल कौन है
बलदेव,
बलदेव प्रभु के मूल कौन है, ये कृष्ण स्वयं। परमात्मा की तो बात छोड़ो, परमात्मा कृष्ण स्वयं उनके सामने आकर के उनके साथ में बातचीत करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, उनको प्यार करते हैं अपने साक्षात रूप से। उनके संबंध में गोविंद जी, गोविंद माने गोपी, गोपियों की बिंद, बिंद माने आनंद देने, गोपियों को आनंद देते हैं कौन, ये कृष्ण। सब भक्त लोगों को कृष्ण आनंद देते हैं, किंतु डायरेक्ट रूप में नहीं, अपने अंश के रूप में और सभी स्फूर्ति में। किंतु ये गोविंद स्वयं कृष्ण बन करके, मदन मोहन बन करके, गोविंद गोपीनाथ बन करके ब्रज में गोपियों के साथ में नृत्य किया, उनकी करुणा चाही, उनको मनाया, उनको कोई खिला रही है, कोई उनका हाथ बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस गोपीनाथ। इस प्रकार से उनके माधुर्य का आस्वादन किया कौन, उन गोपियों ने। ब्रह्मा इत्यादि नहीं कर सकते, परमात्मा के रूप में नहीं करेंगे, उद्धव जी ब्रजवासियों की श्री कृष्ण के लिए जो व्याकुलता दर्शन किया, कैसा व्याकुलता दर्शन किया, मानो एक मिनट नहीं देखने से मर जाएंगी, ऐसा किसी को नहीं देखा। उद्धव जी पहले समय से थे, हमारे बराबर का कोई भक्त नहीं है विश्व में, मैं कृष्ण का सबसे प्रिय हूं, कृष्ण ने स्वयं कहा, हमसे थोड़ा सा भी न्यून उद्धव नहीं। और जब ब्रज में गए सोचा कि मैं कृष्ण को छोड़कर के कैसे रहूंगा, कृष्ण ने उनको किसी तरह से इंगित किया कि देखो मैं वहां पर ही संपूर्ण रूप हूं, यहां पर नहीं, तुम जब ब्रज में जाओगे तो हमको यहां भूल जाओगे। उन गोपियों के सामने बात ऐसा ही, जब गए भूल गए कुछ नहीं, इसलिए संपूर्ण रूप से कृष्ण वहीं पर, अब विशेष करके गोपियों के पास में है, इनकी कैसी व्याकुलता। यदि एक मिनट ना दर्शन करें ना कृष्ण का, एक मिनट, एक सेकंड, तो वह एक सेकंड कैसा लगता है, माने जुग जुग बीत गया। और जब दर्शन करती हैं, तो यदि जुग जुग भी दर्शन करे ब्रह्म रात्रि माने जुग, तो मालूम होता है एक क्षण ऐसा किसी को नहीं देखा जाता। विशेष करके जैसे उन्मादग्रस्त हो गई थी महा उन्मादी, किसी को ऐसा नहीं देखा। सीता जी को रामचंद्र जी ने छोड़ दिया, अशोक वन में गई या वाल्मीकि जी के आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में सदा के लिए छोड़ दिया था, किंतु वहां जाकर के अपने पुत्रों को, तो पुत्र तो थे ही, उनको खिलाती पिलाती रहती थी, बड़े दुख से रहती थी, किंतु रहती थी ना, पागल नहीं थी, लंका में भी पागल नहीं थी। और गोपियां कैसी थी, महा उन्माद ग्रस्त,